श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की गौर हरि प्रेम नंदे ऑल ग्लोरियस डिसेंबल डिवोटी श्री श्री गुरु एम गौरांग की ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भूतर्महद्वीर्यैमा पुरो विभो निरमाय सेते यदमुष्टु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से स्कंध 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तत् विद्वद्भिः असद्वृत्तः तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनः अस्माभिः कृतः नृपः सान्त्वितः यदि नः वाचम् न ग्रहिष्यति अधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचम् न ग्रहिष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचम् न ग्रहिष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचम् न ग्रहिष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचम् न ग्रहिष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा
तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो
वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः
सान्त्वितो
यदि नो वाचम्
न
ग्रहिष्यत्यधर्मकृत्
लोकधिक्कारसन्दग्धम्
दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचम् न ग्रहिष्यत्यधर्मकृत्
लोकधिक्कारसन्दग्धम्
विद्वद्विरसद्वृत्तो येनोऽस्माभिः कृतो नृपः सांकृतो यदि नो वाचम् न ग्रहीष्यति लोकधिक्कार संदर्भम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो येनोऽस्माभिः कृतो नृपः सांकृतो यदि नो वाचम् न ग्रहीष्यति धर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो येनोऽस्माभिः कृतो नृपः सांकृतो यदि नो वाचम् न ग्रहीष्यति धर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धम् दहिष्यामः स्वतेजसा
तत् उसकी उत्पाती प्रकृति विद्वत भी परिचित असत वृत्त अपवित्र वेन वे अस्माभिः हमारे द्वारा कृतः बनाया गया नृपः राजा सांत्वितः शांत किए जाने या समझाने पर यदि यदि न हमारा वाचम् शब्द न नहीं ग्रहिष्यति वह स्वीकार करेगा अधर्म कृत सर्वाधिक दुष्ट लोकधिक्कार सार्वजनिक निंदा संदग्धम भस्म किया हुआ दहिष्यामः जला देंगे स्वतेजसा अपने तेज से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने बेल को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उसका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तात्पर्य, साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक मामलों में भले न हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को या राजा को रास्ते पर लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं रह गए हैं। जहां वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे, वहीं अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही। ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि वे पशु मेध यज्ञ कर सके, जिसमें पशुओं को नवीन जीवन लाभ के लिए अग्नि में धकेला जाता था। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान चैतन्य के कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले से सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग है ऋषियों के विचार को पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप सुने हैं कि राजा वेद जब राज पद पर अभिषिक्त हो गया उसका घमंड और भी बढ़ गया और भगवान के भक्ति को रोकने लगा। वह सब जगह ऐसा घोषणा करा दिया कि विष्णु की भक्ति नहीं करनी। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत धर्म भेरि घोषेण सर्वसः। सब जगह घोषणा करा दिया कि कोई भी ब्राह्मण विष्णु के लिए आहुति नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति विष्णु के लिए दान नहीं देगा। ऐसी घोषणा कराया तो ऋषि लोग बहुत दुखी हुए। बेनस्या वेक्ष मुनयो दुर्वृतस्य विचेष्टितम्। राजा के इस व्यवहार को देख करके मुनय ऋषि लोग विमृश्य लोक व्यसनम कृपयोचिस्म सत्रिण सत्रिण। ऋषि लोग एक जगह जुटे थे, सत्र चला रहे थे। अब बेन के दुर्व्यवहार पर विचार किए और इससे जनता को कितनी कष्ट होगी, जनता की क्या दुर्दशा हो जाएगी, इस पर विचार करके कृपा पूर्वक उच्च वे बोलने लगे, कहने लगे, अहो उभयतः प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत। वे विचार करने लगे, आपस में कहने लगे कि कितने दुख की बात है, हमको जनता दोनों तरफ से मारी जा रही है। दारुणी उभय तो दिप्ते इव तस्कर पालयो। ऐसा पहले भी आप सुने हैं, कई एक बार उदाहरण आ चुका है कि जैसे कोई चीटी हो और किसी लकड़ी पर स्थित है, दोनों तरफ आग लग जाए तो अब वो किधर भी नहीं जा सकती, उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो उसी प्रकार तस्कर पालयो, जनता दोनों तरफ से फंस गई। राजा के अभाव में चोर डकैत का भय है और राजा दुष्ट निकल गया तो अब इधर राजा से भी भय है। अराजक भयादेशक कृतो राजा तदर्हण तत्प्यासित भयम तोद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिना। वे विचार करने लगे कि चोर डकैत के भय से, दस्युओं के भय से, तस्कर के भय से हम लोग इसको राजा बना दिए, लेकिन अब तो खुद राजा से बहुत भारी भय उपस्थित हो गया। अब इस स्थिति में प्रजा का कैसे कल्याण होगा। अहेरिव पय पोष पोष कश्याप नर्दित। वे विचार करने लगे कि कोई कोई ऐसी स्थिति होती है उस समय किसी का पोषण करना ही खतरनाक हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई जहरीला सांप है, अब कोई व्यक्ति उसको दूध पिलाने लगे तो अब दूध पिलाने वाले का ही अहित होगा। तो उसी प्रकार बेन प्रकृति खल सुनीता गर्भ संभव। ये तो प्रकृति से ही स्वभाव से बेन दुष्ट है, क्योंकि सुनीता का पुत्र है और निरूपित प्रजापाल स्वजिघांसति वर प्रजा, और उसको राजा के पद पर बैठा दिया गया, तो अब तो वह प्रजा का ही जान ले रहा है, उनका ही, उनको ही मार रहा है, उनको ही नष्ट कर रहा है। लेकिन तथापि शांत्वयेम अमु च अस्मान तत्पातकम स्पृशे। मुनि लोग विचार करने लगे कि उसको राज सिंहासन पर तो हम लोग ही बैठाए हैं और प्रजा संकट में पड़ गई, हम लोग भी दोष के भागी होंगे, हम पर भी दोष आएगा। तो विचार करने लगे कि हम लोग चल करके उसको समझाते हैं, उसको सतपथ पर लाने का प्रयास करेंगे, राजा बेन को सतपथ पर लाने का प्रयास करेंगे। यदि हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो फिर हम पर दोष नहीं लगेगा। हम लोग जैसे पहले अपने कर्तव्य का निर्वाह किए, जनता के कल्याण के लिए कुछ किए, तो इस समय भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चल करके राजा को समझाएं, और यदि उसको उपदेश देते हैं, समझाते हैं, तो कम से कम हमारा दोष खत्म हो जाएगा, हम दोष के भागी नहीं रहेंगे। तो ऐसे कोई ऋषि प्रस्ताव रखे कि हम लोगों को चल करके समझाना चाहिए, तो दूसरे ऋषि कहने लगे कि फायदा क्या होगा, क्या समझाने से वो मानेगा, वो तो हम लोगों के जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर उसी में कोई विचार दे रहा है कि तद्विद्वद्धिरसद्वृत्तो बेनो स्माभि कृतो नृप, कि हम लोग तो उसके स्वभाव को जानते थे, तद्विद्वद् भी ऋषि लोग अपने लिए कह रहे हैं, अस्माभि हम लोग उसको राजपद पर अभिषिक्त किए हैं, और ऐसा नहीं है कि भूल में कर दिए, उसके प्रकृति को, उसके स्वभाव को हम जानते थे। शांतितो यदि नो वाच न ग्रहिष्यत्य धर्म कृत, वो तो बहुत भारी अधार्मिक है, दुष्ट है। और मान लीजिए कि हम जाते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं और समझाने पर भी नहीं मानता है, तो कोई ऋषि कहने लगे कि दहिष्यामस तेजसा, यदि नहीं मानता है तो अपने तेज से इसको भस्म कर देंगे। फिर प्रश्न होगा, भस्म कर देंगे तो राजा का मारने का पाप तो लगेगा, कि किसी भी प्राणी की हत्या करने पर पाप लगता है, किसी भी प्राणी की हत्या पर। लेकिन प्राणियों में भी कुछ ग्रेडेशन है, कुछ अस्त्रीकरण किया गया है, इसका वर्णन कपिल देव श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में किए हैं, वह आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि प्राणियों की श्रेष्ठता कैसे स्थापित की गई है। और किसी भी प्राणी की हत्या करना बहुत भारी पाप है, लेकिन उसमें भी मनुष्य की हत्या सबसे बड़ा पाप है। मनुष्यों में भी स्त्री की हत्या जघन्य अपराध है, या राजा की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये जघन्य अपराध है। और मनुष्यों में राजा बहुत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सारे देवताओं का वास राजा के शरीर में होता है, वह सबका पालन करने वाला है। और ऋषि लोग यह प्रस्ताव रखे, हम जाकर के बेन को समझाएंगे, और कोई ऋषि कहने लगे कि ना, समझाने से मानने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कम से कम हमारा दोष तो खत्म हो जाएगा, हम अपना कर्तव्य कर देंगे। और कोई इसी में कहा कि नहीं मानेगा तो प्रजा का कल्याण करना है तो उसको अपने तेज से जला देंगे। लेकिन फिर प्रश्न है कि भी जला देंगे तो फिर एक नया पाप लगेगा, राजा को मारने का पाप लगेगा। तो कह रहे हैं कि लोक अधिकार संदर्भ, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो वह दुष्ट प्रकृति का है और हम जला देंगे, उसको मार देंगे, तो हम पर पाप नहीं लगेगा। भाई क्यों नहीं पाप लगेगा? क्योंकि वह पहले से ही मारा जा चुका है, उसको पहले से ही मार दिया गया है। कैसे मार दिया गया है? लोक अधिकार संदर्भ, उसके दुर्व्यवहार से, उसके अत्याचार से सारी जनता तो उसको गाली दे रही है, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, तो एक तरह से वह मरा हुआ ही है। यह सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति की अपकृति बहुत फैल जाती है, सब लोग जिसको गाली देते हैं, निंदा करते हैं, तो वह मरा हुआ ही है। आप श्रीमद्भागवतम में सुने हैं जन्माष्टमी के टाइम में, या कई एक बार इस कथा को सुने होंगे, जब भगवान वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी का तेज बहुत बढ़ गया। भगवान उनके मन में आए तो स विभ्रत पौरुषम धाम, अब भगवान जब उनके मन में आए तो भगवान के तेज को धारण कर लिए वसुदेव जी, और उनका तेज इतना बढ़ गया है, दुरासदो दुर्धर्षो भूताना मिव, ऐसे कह रहे हैं कि जब भगवान का तेज आया, सब विभ्रत पौरुषम धाम भ्राज मानो यथारति, वे सूर्य के समान चमकने लगे वसुदेव जी, और दुरासदो दुर्धर्षो भूतानां संबभूव, और उनकी यह स्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति उनको पराजित नहीं कर सकता था। अरे पराजित करने की बात तो दूर है, उनके नजदीक भी कोई नहीं जा सकता था, इतना तेज बढ़ गया वसुदेव जी का। लेकिन जब वसुदेव जी कृष्ण को मन में धारण किए, तो उसके बाद वे उस तेज को देवकी के गर्भ में रखे, समाहित सुरसेन देवी दधार, उस तेज को देवकी के गर्भ में वे प्रदान किए, और देवकी दधार उस तेज को वह धारण की। कह रहे हैं कि सा देवकी सर्व जगर निवास निवास भूता नितराम नरेज, भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, वसुदेव जी का तेज बहुत बढ़ा था, सूर्य के समान बढ़ा था, तो वैसे ही तेज देवकी का भी बढ़ गया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सा देवकी सर्व जगर निवास निवास भूता नितराम नरेज, सारे जगत जिसके अंदर है, सारे जगत को जो धारण करते हैं, उस व्यक्ति को देवकी धारण की है। लेकिन इस स्थिति में भी देवकी बहुत प्रकाशित नहीं हुई, सब जगह उसको लोग नहीं समझ पाए भी। जब तेज को धारण कर रही है, उसी तेज को, तो सब लोग क्यों नहीं जाने? तो कह रहे हैं कि भोजेंद्र गेहे निषिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथाशक्ति, क्योंकि वह बेचारी कंस के कारागार में बंदी थी, कहीं बाहर जा नहीं रही थी, तो दूसरे लोग उसके तेज को नहीं देख सके। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई दीपक है, और दीपक में तेज होता है, जिधर दीपक जाएगा प्रकाशित करता जाता है, लेकिन किसी दीपक को घड़े में बंद कर दीजिए, मिट्टी का घड़ा है और उसके अंदर दीपक को बंद कर दिया गया, तो उस दीपक का प्रकाश बहुत नहीं फैलता है। तो उसी प्रकार देवकी की स्थिति थी, भोजेंद्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा, जैसे अग्निशिखा दीपक कहीं घड़े में बंद हो, वैसे देवकी तो कंस के कारागार में बंद थी, तो बहुत प्रकाशित नहीं हुई। यह दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सरस्वती ज्ञान खले यथाशक्ति, यह कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अब वो अपने ज्ञान का कहीं विसर्जन ही नहीं करे, अपने ज्ञान को कहीं प्रकाशित न करे, तो उसे बहुत लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो देवकी सब प्रकार के तेज से संपन्न होने के बाद भी कंस के घर में अवरुद्ध थे, उसके कारागार में अवरुद्ध थे, लेकिन कंस उसको देखने के लिए गया। ताम्बिक्ष कंस प्रभया जितांतरा विरोचयंतिम भवनम सुचिष्मिता। जब कंस कारागार में गया तो देखा कि देवकी के प्रकाश से पूरा घर प्रकाशित हो रहा है। प्रभया अजितांतरा, क्योंकि भगवान उसके भीतर हैं, तो उसके कांति से विरोचयंतिम भवनम, वो सारा घर ही प्रकाशित हो रहा है। तो यह तो विचित्र दृश्य देखा और इस लक्षण से वह अनुमान कर लिया, एकदम यह निश्चय कर लिया, आहि समय प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम से तो यन्न पूरे यमे दृश्य। वो साफ निर्णय कर लिया कि हमारा जो प्राण हरण करने वाला हरि है, तो निश्चित रूप से इसका आश्रय लिया है, इसके गर्भ में है, क्योंकि इसके पहले तो कभी ऐसे यह नहीं दिखती थी, इतना प्रकाशित, इतना प्रकाशमती यह कभी नहीं थी। तो ये जितना प्रकाश फैला रही है, इसके प्रकाश से पूरा घर आलोकित हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि मेरा वध करने वाला इसका आश्रय लिया, इसके गर्भ में आ गया है। अब कंस विचार करने लगा कि इस स्थिति में हमको करना क्या चाहिए, यह तो एकदम निश्चित है, जो हमारा प्राण हरण करने वाला है वही आ गया है, लेकिन हमको करना क्या चाहिए। कि मध्य तस्मिन करणीय मासु में यदार्थ तंत्रो न विहंत विक्रम। वो विचार करने लगा कि कुछ तो करना चाहिए अपने प्राण की रक्षा के लिए, क्योंकि ये जो हरि है तो अपने विक्रम को नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि गर्भ से बाहर आएगा तो हमारे प्राण लेने की जो योजना है उसको त्याग कर देगा, या यह बहुत कमजोर सिद्ध होगा। तो ऐसे विचार कर रहा है कि ये तो अपना पराक्रम दिखाएगा ही, हमको क्या करना चाहिए। उस समय स्वाभाविक एक विकल्प है कि अभी तो गर्भ में है, गर्भ की हत्या कर दिया जाए, या विवाह के समय ही देवकी को मारने के लिए उद्यत था, तो अभी तो एकदम प्रत्यक्ष है कि प्राण हरण करने वाला इसके गर्भ में आ गया है, तो देवकी की हत्या कर दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके मन में विचार आ रहा है कि न यदर्थ तंत्र न विहंति विक्रम, कि अपने प्रयोजन के वशीभूत होकर के, अपने छोटे से लक्ष्य के वशीभूत होकर के, अपने विक्रम को, अपने पराक्रम को, अपने प्रतिष्ठा को नहीं नष्ट करना चाहिए। उसके मन में एक विचार आ रहा है, वो विचार करने लगा कि हमारी जो भी इज्जत है वो समाप्त हो जाएगी। अरे इज्जत तो उसका पहले से ही समाप्त था, लेकिन फिर भी आदमी को, आदमी के मन में यह विचार रहता है कि हमारी भी प्रतिष्ठा है। वो विचार करने लगा कि ना, देवकी की हत्या करने से हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तो कह रहा है, स्त्रिया ससुर गुरु मत्या बधोयम जस स्त्रियम हंतन काल माई, कि यदि देवकी की हत्या करता हूं तो हमारा बचा खुचा सब चीज समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन के लिए एक स्त्री की हत्या करूं तो हमारा जीवन भी बचेगा नहीं, क्योंकि एक तो यह स्त्री है, स्त्री का वध करना ही बहुत भारी पाप है, बहुत निंदा का विषय हो जाता है। अरे वध करने की बात तो दूर है, स्त्री से झगड़ा करना भी और निंदा का कारण बन जाता है। अब तो इस विषय पर श्रीमद् भागवतम में बहुत चर्चा है, हमको समय नहीं है, हम सब चीज नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात तो दूर है। जो बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, असुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो भी इसका ध्यान रखते हैं। आप समुद्र मंथन का प्रसंग पढ़ते हैं, तो उस समय जब भगवान मोहिनी रूप में अवतरित हुए, असुर लोग में झगड़ा चल रहा था, तो अमृत का कलश दे दिए मोहिनी के हाथ में। अब मोहिनी के हाथ में उसको दे दिए, वो कह रही थी कि आप लोग अपरिचित स्त्री पर कैसे विश्वास कर रहे हैं, यह नीति नहीं है, अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे परिचित स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अब वो बदल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं, और मैं कभी ऐसा न्याय का काम नहीं की हूं, हमसे गलती हो सकती है। वे लोग कहे कि जैसे तुम अच्छा करो बुरा करो तुमको ही बांटना है। तो अंततः वो स्वीकार कर लिए मोहिनी और वो बांटने लगी। तो शर्त यही था कि बराबर बराबर बांटना है, देवताओं को भी देना है दैत्यों को भी देना है। लेकिन कुछ देर के बाद दैत्यों को एकदम पता चल गया कि ना हम लोगों को अमृत नहीं मिलने वाला है, ये तो सब देवताओं को पिला रही है। लेकिन आसन तुष्ण नृप, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वे लोग चुप थे, वे साफ देख रहे थे कि सब पिला ही जा रही है, इधर नहीं आ रही है, तो फिर भी वे चुप थे। एक प्रश्न होगा कि भाई क्यों चुप थे, तो सुखदेव गोस्वामी 6-7 कारण दिए हैं, अभी मैं तो सब याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कारण है कि वे अब शर्त कर चुके थे कि भाई तुमको बांटना है, अब एक बार नेगोशिएशन हो गया तो उससे मुकरना नहीं चाहते, या प्रणयापाय कृतास्ति स्नेह एक कारण दे रहे हैं कि अब इतना उससे प्रेम कर चुके थे, उनका मन इतना उसमें फंस गया था कि अब अमृत का वैल्यू नहीं कर रहे थे। एक कारण दे रहे हैं कि स्नेहा पाए कातर है, वे भयभीत हो रहे थे कि कहीं ये लव अफेयर भंग न हो जाए, कहीं हमारा कॉल क्या रिजेक्ट लिस्ट में न डाल दे, कहीं ब्लॉक न कर दे हमारा नंबर, ऐसे वे भयभीत थे। और एक कारण दे रहे हैं स्त्री विवाद जुगुप्सया, हमको यह कहना है कि ये असुर भी विचार कर रहे हैं कि अब स्त्री से हम लोग कुछ झगड़ा करें, रोके बात विवाद करें, तो इसमें तो शिकायत हम लोगों की ही होगी। हमको यही अंश कहना है कि हत्या करने की बात तो दूर है, स्त्री से झगड़ा करने पर भी निंदा होती है, इसलिए लोक सिद्ध ये बात है। हम लोग कभी कभी ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, कोई कुछ स्त्री से झगड़ा करने लगता है, दूसरे लोग सीधे मना करते हैं, क्यों स्त्री से झगड़ा कर रहे, स्त्री के मुंह क्या लागल बड़ा, तो कंस विचार कर रहा है कि ये स्त्री है, स्त्रिया ससुर, अरे अपनी बहन है, सामान्य स्त्री नहीं अपनी बहन है, और गुरुमत्या वो गर्भिणी है, ये गर्भ है, इसको इस स्थिति में इसका वध करना उचित नहीं है। और इसके बाद कह रहे कि ऐसा करने से हमारा जस समाप्त हो जाएगा, तेज समाप्त हो जाएगा, और भारी पाप से आयु भी समाप्त हो जाएगी। और इसके आगे कंस विचार कर रहा है कि स एष जीवन खलुसम परेत वर्ते तयो अत्यंत संसितेन देहे मृते तम मनुजा सपंक्ति गंता तमोधम तनुमानो ध्रुवम। वह विचार कर रहा है कि स एष जीवन खलुसम परेत, जो बहुत घृणित कार्य करता है तो एक तरह से वह जीवित रहते हुए भी मर गया है। बहुत घृणित कार्य करने से जीवित रहते हुए वो मर गया है। उसमें तर्क दे रहा है क्यों ऐसा है, ये कह रहा है कि मनुजा सपन्ति, यदि मैं अपने बहन की हत्या कर दूंगा जो गर्भिणी है और स्त्री की हत्या करूंगा तो मनुजा सपन्ति, इस कार्य के चलते सब लोग हमारी निंदा करेंगे, मनुजा सपन्ति गाली देंगे। और जिस व्यक्ति को सब गाली दे रहा है, सब निंदा कर रहा है, तो वह जीवन संपरेत सांस लेते हुए भी जीते हुए भी यही माने जो मरा हुआ है। तो यह सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को सब लोग गाली देने लगते हैं, सब लोग निंदा करने लगते हैं, तो प्रायः मरा हुआ है, वो मरण तुल्य उसका जीवन है। तो ऋषि लोग भी विचार कर रहे हैं कि लोक अधिकार संदग्धम दहिश्याम स्वतेजसा, हम लोग चलेंगे उसको समझाएंगे और यदि इतना पर भी नहीं मानता है तो इतना तो निश्चित है कि सब लोग उसकी निंदा प्रारंभ करेंगे, सब लोग विद्रोह करेंगे। तो एक तरह से जनता के निंदा से ही मर चुका है, तो अब मरे हुए व्यक्ति को हम लोग मार देंगे तो हम लोगों पर क्या पाप लगेगा। ये जो पहले से मार दिया गया है, जीवित आदमी को मारने पर मर्डर केस बनेगा ना, मुर्दा को मारने पर तो मर्डर केस नहीं होगा ना। तो ऋषि लोग यही विचार कर रहे हैं कि हम लोग चल करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिखते हैं कि जो भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, तो उनको राजनीति में रुचि नहीं होती, वे पद प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन जनता का कैसे कल्याण हो इसके लिए वे चिंतित रहते हैं, इस पर वे विचार करते रहते हैं समाज के कल्याण के लिए। और इसलिए वे लोग भी कभी कभी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत आवश्यक है, उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। जैसे भारत में गोहत्या हो रही है, कहीं भी गोहत्या हो रही है, ये समाज के लिए कितना भारी घातक है। गाय समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी पशु है, गाय के एक एक चीज से मनुष्य को लाभ है, और जिस समाज में गाय की हत्या हो रही है, साफ इसका अर्थ है कि समाज का बहुत भारी अहित हो रहा है। इसलिए जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, साधु संत हैं, वे समाज के कल्याण के लिए ऐसे मुद्दा पर सक्रिय हो जाते हैं, और करना ही चाहिए। ऋषि यहां साफ निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग चल करके समझाएंगे, और नहीं समझता है तो उसको हम लोग अपने तेज से मार डालेंगे। ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्ति होती है कि उनका वचन सत्य निकल जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह आया है कि ब्राह्मणों के वाणी का प्रभाव दिखाया गया है। जो सत्यवादी ब्राह्मण है वो जो कह देते हैं तो कभी निष्फल नहीं जाता है। दो व्यक्ति के वाणी का बहुत प्रभाव होता है, कोई पतिव्रता नारी है, सती नारी है, वह कुछ कह देती है तो उसका वाणी निष्फल नहीं जाता है, और जो सत्यवादी ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, वे कुछ कह देते हैं तो निष्फल नहीं जाता है। तो ये जो ब्राह्मण है विचार कर रहे हैं तो उनको विश्वास है, वे जानते हैं कि हम अपने वचन से उसको मार सकते हैं। पर इसलिए कह रहे हैं कि हम पहले तो समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानता है तो अपने प्रभाव से उसका वध कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो उस समय के ब्राह्मणों में ऐसी शक्ति थी। इसके पहले आप कथा सुन रहे थे सती के प्रसंग में, तो वहां यज्ञ मंडप का वर्णन आया है। तो उसका वर्णन था वेद मंत्रों से गुंजायमान था, सब जगह वेद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और ब्राह्मणों में कंपटीशन हो रहा था, वे वेद मंत्र के शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। वेद मंत्र के शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे, इसका सीधा अर्थ लिखा गया है कि वे पशुओं को, बूढ़े बूढ़े पशुओं को मार करके आहुति दे रहे थे और एकदम सबके सामने वे पशु नए शरीर को प्राप्त कर रहे थे, जुआ शरीर को प्राप्त कर रहे थे। तो इस प्रकार वहां प्रदर्शन चल रहा था उस यज्ञ में। तो उस समय की बात दूसरी थी, उस समय ऋषि मुनि लोग सक्षम थे, दुष्ट राजाओं को मारने में सक्षम थे, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज तो हम किसी राजा को, किसी बड़े पोस्ट पर जो स्थित है उस व्यक्ति को कुछ फोर्स से कराना चाहे वही जेल में डाल देगा, जमानत लेना एक मुश्किल हो जाएगा, क्या क्या कानून डाल करके जेल में डाल देगा। तो इस समय अब जो में जीवाठ तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं कि हम लोगों को अपना भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और दूसरों को भी कीर्तन ही सुनाना चाहिए, जो जिस विधि से हम समाज का कल्याण कर सकते हैं तो उसी विधि को अपनाना चाहिए। उस समय की बात दूसरी थी, आज की बात दूसरी है। तो हम लोग समाज का कल्याण चाहते हैं तो सब जगह कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। यही समाज के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
सासर बहू लड़की इसके लिए क्या है?
क्या
सासर बहू लड़की इसके लिए क्या
बोलो महाराज।